सोमवार व्रत की विधि और महात्म्य। सोमवार शक्ति संबंधी वार है और इस वार के स्वामी सोम हैं। सोम के व्रती को उचित है कि वो दिन के तीसरे पहर तक सर्वथा ही निराहार रहे, पश्चात दिन में अथवा रात में केवल एक समय आहार करे। इसमें फलाहार आदि का कोई नियम नहीं है। सोमवार के व्रती को यथा साध्य सभक्ति शिव पार्वती का पूजन करना योग्य है। सोमवार का व्रत तीन प्रकार से किया जाता है। एक तो साधारण, चाहे प्रत्येक सोमवार को किया करे, अथवा प्रदोष सहित सोमवार को, अथवा गिनकर 16 सोमवार का व्रत करे। सबकी विधि एक ही है। व्रती को उचित है कि वो शिव जी की पूजा करने के पश्चात इस कथा को सुने। सोमवार व्रत की कथा। प्राचीन काल की बात है कि एक नगर में एक वैश्य रहता था जो बड़ा ही धनी तथा ऐश्वर्य युक्त था, जिसके कारण उसे किसी प्रकार का कष्ट या दुख न था। परंतु इतनी अतुल संपत्ति होते हुए भी उसे भोगने वाला उसको कोई संतान न थी, जिसका उसे सर्वदा दुख बना रहता था। वह वैश्य शिव जी का बड़ा भक्त था और प्रति सोमवार को शिव जी का व्रत तथा पूजन किया करता था। उसे विश्वास था कि शिव जी का भजन पूजन करने से मुझे एक दिन पुत्र अवश्य उत्पन्न होगा, जो मेरे इस अतुल धन का भोग करेगा। ऐसा मन में विचार कर वो प्रति सोमवार को व्रत करता तथा सायंकाल शिव जी के मंदिर में जाकर दीपक जलाया करता था तथा बड़ी भक्ति से मधुर पाक व्यंजन बनाकर शिव जी को भोग लगाकर स्वयं प्रसाद लेता और पत्नी को देता था। उसे ऐसा करते देख भक्त वत्सला देवी पार्वती से न रहा गया और वे शिवजी से बोली, हे शिवजी, यह वैश्य जो प्रति सोमवार को आपका व्रत करके सायंकाल दीपक जलाता तथा इस प्रकार बड़ी भक्ति भावना से पूजन करता है, तो आप इसके दुख का निवारण क्यों नहीं शीघ्र करते? तब पार्वती जी के सुंदर वचनों को सुन शिवजी बोले, हे देवी पार्वती, इस वैश्य के तो पुत्र नहीं है, यह इसके पूर्व जन्मों का ही फल है। हे देवी, यह जगत तो कर्ममय है। मनुष्य कर्म के बंधनों से बंधा हुआ यहां आता है तथा अपने अपने कर्मों के फलों को भोगता है। उसी प्रकार यह वैश्य भी पूर्व जन्म के कर्म के कारण इस जन्म में निसंतान होकर दुख उठा रहा है। शिवजी के ऐसे उपदेशात्मक वचनों को सुनकर भी पार्वती जी ने नहीं माना और कहने लगी, हे ईश्वर, आप तो भक्त वत्सल हैं, फिर अपने भक्त पर क्यों नहीं दया करते, जबकि वो सदैव आपकी भक्ति प्रेम पूर्वक करता है? फिर आप उसे पुत्रवान करके उसके दुख का उन्मूलन क्यों नहीं करते? यदि आप अपने भक्तों के दुख का निवारण नहीं करेंगे तो कौन आपका व्रत पूजन और सेवा करेगा? हे शिवजी, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप कृपा करके उसे अवश्य ही पुत्रवान कीजिए। जब पार्वती जी शिव जी से ऐसा कहने लगी तो शिव जी बोले कि हे देवी, जब तुम ऐसा कहती हो तो मैं तुम्हारे कहने से उसे पुत्र का वर देता हूं। यद्यपि उसके भाग्य में पुत्र का सुख तो नहीं है, यह तो केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा, इसके पश्चात वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार कुछ काल व्यतीत होने पर उस वैश्य की स्त्री गर्भवती हुई तथा 10वां महीना प्राप्त होने पर एक सुंदर पुत्र की उत्पत्ति हुई, जिससे उसके घर में बड़ी खुशी मनाई गई। सब लोग अत्यधिक हर्षित हुए, परंतु उस वैश्य को कुछ विशेष सुख न मिला, क्योंकि उसे यह विदित था कि यह पुत्र 12 वर्ष बाद पुनः मृत्यु द्वारा ग्रसित हो जाएगा। इस प्रकार हंसी खुशी में वो 12 वर्ष का हो गया। एक दिन उसकी माता वैश्य से विवाह के लिए कहने लगी तो उसका पिता विचार कर कहने लगा कि अभी विवाह की क्या जल्दी है, अभी तो मैं इसे काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। स्त्री से ऐसा कह उस वैश्य ने बालक के मामा को बुलाया और उसे खूब अधिक धन देकर बोला कि अब तुम अपने भांजे को काशी जी ले जाओ और इसे विद्याध्ययन कराओ तथा रास्ते में स्थान स्थान पर ब्राह्मणों को भोजन देते तथा यज्ञ करते जाना। इस प्रकार वे दोनों मामा भांजे स्थान स्थान पर ब्राह्मणों को भोजन देते तथा यज्ञ करते हुए एक नगर में पहुंचे। वहां के राजा की कन्या का उस दिन विवाह था। कन्या बड़ी ही रूपवती और सर्व गुण संपन्ना थी, परंतु राजकुमार अर्थात जिससे उस राजकुमारी का विवाह होने वाला था वो काना था, जिससे उसके पिता को चिंता थी। परंतु जब उसने वैश्य के पुत्र को देखा जो बड़ा रूपवान था तो विचार कर उसके मामा से कहने लगा कि यदि थोड़ी देर के लिए आप अपने भांजे को मुझे दे दीजिए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। थोड़ी देर की ही तो बात है, विवाह हो जाने के बाद हम इसे वापस कर देंगे और आपको बहुत सा धन देंगे। फिर तो बालक के मामा ने स्वीकार कर लिया। वर का पिता उसे वर बनाकर मंडप में ले गया और विवाह का समस्त कार्य बड़ी दक्षता से संपन्न किया। परंतु जब लड़का सिंदूर दान करके लौटने लगा तो उसने कन्या की साड़ी के आंचल पर लिख दिया कि हे भामिनी, तुम्हारा विवाह मुझ वैश्य के पुत्र से हुआ है और अब मैं काशी में पढ़ने जा रहा हूं, परंतु जिसके साथ तुम्हें भेजा जाएगा वो एक आंख का काना तुम्हारा पति नहीं है। इस प्रकार विवाह कार्य संपन्न होने पर विदा की बेला पर जब राजकुमारी ने अपनी साड़ी पर कुछ लिखा देखा तो उसे पढ़कर उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और बोली, यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति तो वैश्य पुत्र है जो इस समय काशी जी में पढ़ने के लिए गया है। फिर तो राजकुमारी की ऐसी बात सुन उसके माता पिता अत्यंत आश्चर्य में पड़ गए और राजा अर्थात वर के पिता की धूर्तता से अत्यंत दुखी हुए। तथा कन्या को विदा नहीं किया। खाली बारात बिना कन्या के लौट गई। उधर वो वैश्य का पुत्र तथा उसका मामा दोनों काशी जी में पहुंचे तथा बालक ने अपना अध्ययन प्रारंभ कर दिया और उसके मामा ने यज्ञ करना प्रारंभ किया। इस प्रकार कुछ दिन व्यतीत होते हुए लड़के की अवस्था 12 वर्ष की हो गई। उस दिन यज्ञ हो रहा था कि उस बालक ने अपने मामा से कहा कि आज मैं कुछ अस्वस्थ हूं और सोने जा रहा हूं। ऐसा कहकर वो जाकर सो गया, परंतु उसके सोने के थोड़ी ही देर बाद उसके मामा ने आकर देखा तो भांजे को मरा हुआ पाया, जिससे वो अति दुखित हुआ। परंतु यज्ञ हो रहा था इसलिए यज्ञ विध्वंस के भय से चुप ही रहा, और जब यज्ञ कार्य समाप्त हो गया तथा सब ब्राह्मण चले गए, तब वो खूब जोर जोर से रोने लगा। उसी समय भाग्यवश पार्वती जी सहित शिव जी उधर से जा रहे थे कि तभी पार्वती जी ने करुण रुदन सुना, जिसे सुन उनका हृदय द्रवीभूत हो गया और वे शिव जी से कहने लगी कि हे कृपा निधान, देखिए तो कौन इस समय इतनी करुणा से रुदन कर रहा है। आप वहां चलकर देखिए तो सही कि वो क्यों रो रहा है। तब पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिव जी उस स्थान पर गए कि जहां उसका मामा अपने भांजे को लेकर रो रहा था। फिर तो पार्वती जी ने उस बालक को पहचान लिया और बोली, हे महाराज, देखिए तो यह इतना सुंदर वैश्य का बालक मरा जा रहा है जो आपके वरदान से हुआ था। शिव जी बोले, हे देवी, यह बालक अपनी आयु समाप्त कर चुका और मर गया, इसमें किसी का क्या दोष। पार्वती जी ने कहा, हे देवाधिदेव शिव जी, जैसे आपने इसे अब तक 12 वर्ष की आयु दी थी, वैसे ही जीवन पर्यंत के लिए और आयु दीजिए, नहीं तो वह वणिक पुत्र के वियोग में मृत्यु को प्राप्त होगा। तब पार्वती जी के ऐसा कहने पर शिव जी ने वणिक पुत्र को जीवित कर दिया। इस प्रकार वो शिव जी के वरदान से जीवित हो गया और शिव पार्वती पुनः अपने धाम को अंतर्धान हो गए। फिर कुछ दिनों के पश्चात वो बालक अपने मामा के साथ अपने नगर की ओर चल पड़ा तथा चलते चलते पुनः उसी नगर में आया जिस नगर में राजकुमारी के साथ उसका विवाह हुआ था। वहां पहुंच उसने यज्ञ करके ब्राह्मण भोजन दिया, जिससे भोजन करके जाते हुए पंडितों द्वारा राजा को यह सूचना मिली कि काशी से कोई वैश्य पुत्र आया है जो यज्ञ करके ब्राह्मण भोजन दे रहा है। तो राजा उसे देखने के लिए गया और वहां जा उसने स्वयं अपने जामात्र को देखा तो अति प्रसन्न हो आदर के साथ अपने महल में ले आया और कुछ दिन तक रखकर खूब आदर सत्कार किया और पुत्री को खूब दान दहेज सहित उसके साथ विदा किया। तब वो वणिक पुत्र स्त्री सहित मामा के साथ अपने नगर की ओर चला। जब वे लोग घर के थोड़ा निकट आए तो मामा ने कहा कि मैं जाकर पहले अपनी बहन को तुम्हारे आने की सूचना देकर आता हूँ, जिससे कि वे वधू सहित तुम्हारा स्वागत करें। इधर वो वैश्य अपनी स्त्री सहित छत पर जाकर बैठा था कि यदि मेरा पुत्र काशी से लौट कर नहीं आएगा तो हम लोग यहीं से कूदकर प्राण दे देंगे। परंतु जब साले ने जाकर कहा कि आपका पुत्र कुशल से अपनी स्त्री सहित आ रहा है, आप लोग विधिवत उसका स्वागत कीजिए, साले की ऐसी बात सुनकर वे लोग अति प्रसन्न हुए और बड़े आदर के साथ पुत्र वधु का स्वागत किया और अति प्रसन्न होकर सोमवार व्रत करने तथा शिव जी का विधिवत पूजा वंदना करने लगा। जो मनुष्य सोमवार का व्रत करके शिव जी का पूजन करता है और इस कथा को सुनता है, वह सब कष्टों से छूटकर अपने समस्त मनोरथों को पाता है।